राजवंश एम्पायर में मीटिंग हो रही थी, जहां नक्श की करतूतों का सबक सिखाने के लिए अभिमन्यु ने उसकी अब तक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकलवाई और फिर उसी बेसिस पर उसका डिमोशन कर दिया। नक्श को ये मंजूर नहीं था तो वो राजवंश एम्पायर छोड़कर चला गया। नक्श के बाद अब नकुल की बारी थी, जो काम के बहाने से कंपनी के अकाउंट से काफी सारे बड़े अमाउंट निकाल चुका था। नक्श का जो हाल हुआ उसे देखकर नकुल को डर लग रहा था। प्रशांत अब तक चुप था क्योंकि वो नकुल के मामले के बाद बोलने वाला था। नक्श के बाद नकुल का रुख करते हुए मिस्टर एंड्रू ने कहा, पिछले 6 महीने में कंपनी के अकाउंट से मिस्टर नकुल राजवंश ने पूरे 1100 करोड़ रुपए निकाले हैं। मैंने 1100 करोड़ नहीं, पूरे 1150 करोड़ रुपए निकाले हैं मिस्टर एंड्रू, और ये लीजिए उसका डेटा। नकुल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और एक फाइल आगे पास कर दी थी। उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु के चेहरे पर वही न दिखने वाली हल्की स्माइल उभर आई। मिस्टर एंड्रू ने 15 मिनट लगाए फाइल का डेटा पढ़ने में। उसके बाद मिस्टर एंड्रू ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ तो तुम लोगों को क्या लगा था, मैंने कंपनी का पैसा चुराया है? तुम लोग मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा भी कैसे सकते हो? ये कंपनी मेरी भी है और कंपनी का नुकसान मेरा नुकसान है, नकुल ने बिफरते हुए कहा। नकुल की अपनी बेगुनाही साबित करते ही प्रशांत को तो जैसे मौका मिल गया था अभिमन्यु पर चिल्लाने का। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर भौहें सिकोड़कर बोला, यहां सब लोग दूसरों का हिसाब किताब करने बैठे हैं जबकि खुद की गलतियां उन्हें दिखती नहीं हैं। तुम कंपनी के सीईओ हुए तो क्या, तुम्हें भी अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोर्ड को दिखाना होगा। पहले मिस्टर नकुल राजवंश का तो देख लेते हैं, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन अब क्या बाकी रह गया, मैंने सब कुछ तो बता दिया, नकुल ने चौंक कर कहा। उसे लगा अभिमन्यु को धोखा देना आसान होगा, पर वो नहीं जानता था अभिमन्यु की हमेशा से उस पर नजर थी। अभिमन्यु ने उसे अनदेखा किया और मिस्टर एंड्रू की तरफ देखकर कहा, फाइल मुझे दीजिए मिस्टर एंड्रू। एंड्रू ने चुपचाप फाइल अभिमन्यु को दे दी थी। नकुल गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा होकर बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इस तरह सबके सामने मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हो, मेरी भी एक पोजीशन है। इतना कहकर उसने बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, आप लोग क्या बैठे बैठे इसे देख रहे हैं? ये सीईओ है तो अपनी मनमानी करेगा। आज मेरे साथ ही अन्याय और जोर जबरदस्ती हो रही है, कल आपके साथ भी होगा। ये बस अपनी पर्सनल गर्ज निकाल रहा है, घर के मामलों को कंपनी में ला रहा है। पहले मेरे बेटे को टारगेट किया तो अब मुझे। आज आपने इसे नहीं रोका तो कल को इसे और बढ़ावा मिलेगा। नकुल उन सबको भड़काने लगा। उससे अलग अभिमन्यु ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और फाइल पढ़ने में बिजी था। पृथ्वी ने नोटिस किया नकुल के बहकावे पर सब आपस में फुसफुसाने लगे। वो मन ही मन बोला, मिस्टर राजवंश को शांत नहीं रहना चाहिए, उन्हें पता है ऐसे ही बोर्ड मेंबर्स उनके डिसीजंस के चलते उन्हें पसंद नहीं करते हैं, ऊपर से ये उन्हें एक और मौका दे रहे हैं बगावत करने का। पृथ्वी इस बारे में अभिमन्यु को आगाह करता उससे पहले एक बोर्ड मेंबर ने अपने माइक में सख्त लहजे में कहा, मिस्टर राजवंश आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, बिना किसी कंप्लेंट के आप इस तरह किसी इंपॉर्टेंट मेंबर को कटखरे में लाकर नहीं खड़ा कर सकते हैं। मिस्टर शेखावत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर राजवंश, दूसरा बोर्ड मेंबर उसका पक्ष लेते हुए बोला, ठीक है मिस्टर नक्श राजवंश की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो आपने ये मीटिंग बुलाई और उस हिसाब से डिसीजन दिया, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी के फंड में पैसे इधर उधर हो रहे हैं, मिस्टर नकुल राजवंश ने पैसे निकाले लेकिन उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है, फिर अब क्या बाकी रह गया, आप उन्हें जलील कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स आपस में अभिमन्यु के खिलाफ बातें करने लगे। इस बात का फायदा उठाते हुए कशांत ने कहा, चलो तुम लोगों का ध्यान तो गया इस तरफ, वरना मुझे लगा था कि ये लड़का हमेशा अपनी मनमानी करता रहेगा, यही सही मौका है जब हम सब एक तरफ होकर इसे इसकी पोजीशन से हटा सकते हैं। मेरे हिसाब से अगला सीईओ नकुल ही सही रहेगा। वो सब लोग अभिमन्यु के खिलाफ प्लानिंग तक करने लगे लेकिन अभिमन्यु का ध्यान अभी भी फाइल में था। पृथ्वी ने गहरी सांस ली और अभिमन्यु के कंधे पर हल्का सा टैप करते हुए उसके कान के पास झुककर कहा, मिस्टर राजवंश ये लोग आपके खिलाफ फिर से खड़े हो गए हैं, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बस 2 मिनट रुको पृथ्वी, लास्ट पेज पढ़ना बाकी रह गया, तब तक तुम हमारे प्लान बी पर काम करो, अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर धीरे से जवाब दिया। अभिमन्यु ने पृथ्वी के साथ मिलकर पहले ही प्लान कर रखा था, अगर उनका प्लान ए सक्सेसफुल होता तो फिर वो प्लान बी की तरह बढ़ रहे थे। अभिमन्यु ने उसे प्लान बी इम्प्लीमेंट करने का इशारा किया था, इसका मतलब साफ था प्लान ए सक्सेसफुल हो गया था। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। वहीं इस तरह उन्हें आपस में देखा और फिर बाद में पृथ्वी को स्माइल करते हुए बाहर जाते देखकर प्रशांत उनकी तरफ घूरकर देखने लगा। उनमें से आगे कुछ बोलता उससे पहले अभिमन्यु ने फाइल बंद करके टेबल पर रखी और अपने माइक में नकुल की तरफ देखकर कहा, आपकी डेटा के हिसाब से राजवंश एम्पायर की तरफ से एनजीओ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को फंड दिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये शुरुआत दादी ने बहुत पहले की थी, मैंने बस उसी को आगे बढ़ाया है, तुम चाहो तो वहाँ कॉल करके पूछ सकते हो, राजवंश एम्पायर की तरफ से उन्हें टाइम टू टाइम फंड मिल रहा है, नकुल ने जवाब दिया। ठीक है, उसके बाद आपने बचा हुआ फंड न्यू एनर्जी डिपार्टमेंट के रॉ मटेरियल खरीदने के लिए निकाला था। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, वहां पर भी आपने फंड निकाला था। यही लिखा हुआ है ना मिस्टर नकुल राजवंश? अभिमन्यु ने उस फाइल में लिखा डेटा उन सबको बताते हुए कहा। हाँ, तो मैंने इसी के लिए पैसे निकाले थे। जब सब कुछ फाइल में लिखा हुआ है तो मुझे बोलकर बताने की क्या जरूरत है? नकुल ने कंधे उठाकर जवाब दिया। नकुल की सब एक्सेप्ट करते ही अभिमन्यु के चेहरे पर वही न दिखने वाली स्माइल आ गई। उसने सिर हिलाकर कहा, आपने जिन ऑर्गेनाइजेशन को फंड देने की बात कही है वहां मैं पर्सनली गया था। आपने सही कहा, वहां टाइम टू टाइम डोनेशन पहुंचा है, लेकिन आप लेने नहीं गए थे, मैं पृथ्वी के साथ गया था। चलिए सबूत के तौर पर मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु ने मिस्टर एंड्रयू की तरफ इशारा किया। उन्होंने प्रोजेक्टर ऑन किया तो सामने कुछ तस्वीरें थीं, जिनमें अभिमन्यु पर्सनली उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर से मिला था। कुछ तस्वीरों में तो इशिका तक उसके साथ थी। नकुल के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब बाकी बोर्ड मेंबर्स भी हैरानी से उन तस्वीरों को देख रहे थे। अभिमन्यु आगे बोला, राजवंश एम्पायर की तरफ से इंडिया के अंदर 500 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को चुना गया है जहां हम डोनेशन करते हैं। बाकी जगह ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन किया जाता है, जबकि आसपास के एरिया में मौजूद ऑर्गेनाइजेशन में हम खुद जाकर उनके शहर में अटेंड करके डोनेशन करते हैं। काम के चलते हम सेरेमनी अटेंड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारी तरफ से कभी इस काम में लापरवाही नहीं हुई, क्योंकि पर्सनली मैं खुद सब देख रहा हूँ। इससे पहले कि अभिमन्यु नकुल को सबके सामने पूरी तरह बेनकाब कर देता, प्रशांत अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वहां डोनेशन करके आते थे? तुम उन्हें ऐसे भी मिलने जा सकते थे, तुम जाते रहते हो। ठीक है, फिर उसके लिए हम उन्हें डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेते हैं, अभिमन्यु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। वो सच बोल रहा था तो उसे डरने की जरूरत नहीं थी। प्रशांत चुप हो गया था तो अभिमन्यु आगे बोला, चलो डोनेशन को साइड करते हैं, अब रॉ मटेरियल पर आते हैं। आप अच्छे से जानते हैं जिस भी डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल खरीदा जाता है उसके लिए एक अलग शख्स को हायर किया गया है। कहो तो उन सबको बुलाकर उनसे पूछ लिया जाए कि कब और कितना रॉ मटेरियल खरीदा गया था और ट्रांजैक्शन किसके जरिए हुआ था।
नकुल के पास अब कहने को कुछ नहीं था, उसकी नजरें झुक गई थीं। उसे लगा था कि वो सबके सामने एक फेक डेटा दिखा देगा तो वो काफी होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अभिमन्यु पहले से ही पूरी छानबीन करके बैठा था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं आपको इन सबका रियल डेटा दिखाने जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने प्रोजेक्टर को हैंडल करते हुए सामने कुछ तस्वीरों को दिखाया। अभिमन्यु ने नकुल की तरफ देखकर कहा, मिस्टर नकुल राजवंश, आपने अपने पूरे 1150 करोड़ का नहीं 1500 करोड़ का गबन किया है, और इसके लिए मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का ऐलान करता हूँ। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुँचती होगी, अपने लॉयर को कॉल कर लीजिए। अगर आपके पास रियल डेटा है तो अच्छी बात है, वरना कंपनी के साथ धोखेबाजी करने के लिए मैं आपको आपकी पोजीशन से हटाता हूँ। वहीं बात आपके शेयर्स की तो वो हमेशा आपके नाम रहेंगे, लेकिन आपको कोई इम्पोर्टेंट फैसला लेने का हक नहीं होगा और ना ही आगे से आप कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। अभिमन्यु इतना सख्त फैसला लेगा इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। नकुल जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और लगभग गिरते हुए बोला, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं ये पैसा चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ लीगली करना है। अभिमन्यु ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सब कुछ लीगली करने का मतलब वो सब अच्छे से समझते थे। पुलिस का इन्वॉल्व होना मतलब खबर का मीडिया में आना, और इसी के साथ नकुल राजवंश की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। यही अभिमन्यु का प्लान बी था। अभिमन्यु के कहने पर पृथ्वी ये पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने नकुल के पास आकर कहा, मिस्टर राजवंश, आपको अपनी ही कंपनी के साथ धोखेबाजी और गबन करने के इल्जाम में मैं अरेस्ट कर रहा हूँ। आपको चुप रहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आपकी कही हर बात आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल होगी। मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज अभिमन्यु ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नकुल गिरता गिरता रह गया, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर ले गई थी। वहीं उसको वहां से ले जाने के बाद मीटिंग ओवर होते ही एक एक करके बोर्ड मेंबर वहां से निकलने लगे। प्रशांत का गुस्सा अब बेकाबू हो गया था। वो अभिमन्यु के पास आया और गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाकर बोला, तुम आखिर चाहते क्या हो? जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सबसे बुरा फैसला था मेरा तुम्हारी माँ के साथ शादी करने का। उस औरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ऊपर से तुम्हें मेरे सर पर छोड़कर खुद मजे से जिंदगी बिता रही है। जब तुम वीक पैदा हुए थे तो इस वक्त मर क्यों नहीं गए थे? प्रशांत अक्सर अभिमन्यु को बचपन में ये सब कहता रहता था। तब भले ही अभिमन्यु पर उनकी बातों का असर पड़ता था, लेकिन अब अभिमन्यु बिना किसी भाव के वहां खड़ा था। उसने प्रशांत के हाथ अपनी कॉलर से हटाए और सख्त आवाज में कहा, बिहेव योरसेल्फ मिस्टर प्रशांत राजवंश, वरना आपकी इस हरकत पर मैं आपको भी अरेस्ट करवा सकता हूँ। प्लीज अपनी लिमिट्स में रहिए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो नालायक लड़के, प्रशांत गुस्से में बोला, और उसने अभिमन्यु के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया। जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दूंगा। तुमने मेरे बेटे को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया है ना, तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा अभिमन्यु, प्रशांत ने उसे उंगली दिखाकर कहा और वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही अभिमन्यु ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया था। ऐसा नहीं था कि पहली बार प्रशांत ने उसके ऊपर हाथ उठाया था या उसे भला बुरा कहा था, लेकिन वो अपनी कड़वी यादों को भूलकर आगे बढ़ चुका था। आज प्रशांत के थप्पड़ ने उसे फिर से उन यादों और जिंदगी के बीच धकेल दिया था, जिसे अभिमन्यु निकालने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो यादें कभी न कभी उसके दिल के जख्मों को हरा ही देती थी। अभिमन्यु गुस्से में जोर से चिल्लाया और उसने सारी फाइलें एक झटके में नीचे फेंक दी थी। उसकी आंखों के सामने अंजलि का चेहरा आ गया। वो अपनी लाइफ में खुश थी। वो अभिमन्यु के सामने पहली बार आई थी तो भी अपना फायदा निकालने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि उसने मर्चेंट फैमिली के सालों पहले एक सौदा किया था और उसके चलते अभिमन्यु को उनके पास जाना ही होगा। क्या मैं इतना बुरा हूं कि अपने ही माँ बाप के प्यार का हकदार नहीं, अभिमन्यु ने दर्द भरी आवाज में कहा। एक तरफ जहां इशिका अभिमन्यु के आने का इंतजार कर रही थी, तो वहीं अभिमन्यु राजवंश एम्पायर के मीटिंग रूम में एक कोने में जमीन पर बैठकर अपनी बुरी यादों के साथ संघर्ष कर रहा था। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। मैंने कभी अभिमन्यु की लाइफ से जुड़ा कोई फेज इतना क्लियरली नहीं दिखाया है। हमेशा इशिका ही प्रायोरिटी रही है, तो अब अभिमन्यु की बारी। चलिए अगले चैप्टर पर मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।